पृष्ठ संख्या 32। आचार्य शुक्ल के हाथ हिंदी आलोचना की बागडोर आते ही जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात घटित होती है वह है साहित्यिक रुचि में परिवर्तन। देव और बिहारी और देव के तुलनात्मक अध्ययन से स्थानांतरित होकर सारा बल भक्तिकालीन साहित्य पर जा पड़ता है और इस प्रकार एक बार ही हिंदी आलोचना का केंद्र बदल जाता है। केवल तुलना के लिए ही नहीं, टीका व्याख्या के लिए भी अब तक हिंदी के आलोचक रीति साहित्य को ही सर्वाधिक उपयुक्त विषय मानते थे। ऐसी पृष्ठभूमि में अवतरित होकर आचार्य शुक्ल ने पूरी साहित्यिक परंपरा का पुनर्गठन किया है। बिना नंबर दिए भी उन्होंने अपनी व्यवहारिक आलोचना के माध्यम से हिंदी कवियों का जो तारतमिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया वह उनके समय की बदलती रुचि का प्रमाण है और इस रुचि के निर्माण का श्रेय आचार्य शुक्ल को ही दिया जाएगा। पाठक में अच्छे बुरे के बीच अच्छे साहित्य के चुनाव की पहचान पैदा करने को मिश्र बंधु आलोचक का प्रमुख दायित्व मानते थे। शुक्ल जी ने भी जैसे यही काम किया पर मूल्यांकन की परीक्षा पद्धति से नहीं, ब्रैकेट में जिसे वे एक बेहुदा बात समझते थे ब्रैकेट क्लोज, बल्कि व्याख्या विश्लेषण पद्धति से। कोई आलोचक किन साहित्यिक मूल्यों को महत्व देता है इसका प्रमाण उसकी साहित्यिक पसंद नापसंद से मिलता है। अपने आलोचक कर्म के दौरान वह किस प्रकार के साहित्य को मान्यता देता चलता है, साहित्य में वह किन विशेषताओं को तरजीह देता है और नापसंदगी की स्थिति में किन बातों की निंदा करता है, इससे उसके साहित्यिक मूल्य उसकी जीवन दृष्टि उभर कर सामने आती है। आचार्य शुक्ल ने व्यवहार में ही अपनी रुचि भक्तिकालीन साहित्य के प्रति नहीं दिखाई, सिद्धांत में भी रीति ग्रंथों के बुरे प्रभाव की चर्चा की। उनका विश्वास था कि अपने देश की साहित्यिक रुचि को जकड़बंद करने में रीति ग्रंथों का बहुत बड़ा हाथ है। इन्हीं रीति ग्रंथों के कारण कवियों की दृष्टि संकुचित हो गई, लक्षणों की कवायद पूरी करके वे अपने कर्तव्य की समाप्ति मानने लगे। काव्य का स्वरूप संगठित करने के स्थान पर वे बाहरी सजावट में अधिक उलझने लगे, ब्रैकेट में रस मीमांसा पृष्ठ संख्या 75 ब्रैकेट क्लोज। शुक्ल जी का विरोध सजावट से उतना नहीं है जितना लक्षणों की कवायद पूरी करने से और काव्य में उनके सापेक्ष महत्व से है। सजावट करने वाला व्यक्ति कला निपुण हो सकता है और शुक्ल जी कला निपुणता और सहृदयता को एक ही वस्तु न मानते हुए कवि के लिए दोनों की अनिवार्यता स्वीकार करते थे। जिसे उन्होंने काव्य का स्वरूप संगठित करना कहा है उसका आधार सहृदयता ही हो सकती है। शुक्ल जी का रसवाद इसी अर्थ में रीति ग्रंथों के रस निरूपण से भिन्न था कि वे उनमें गिनी गिनाई बातों की निर्दिष्ट शैली के अनुसार आंख मूंद कर कह देने की रस्म अदायगी के पक्ष में न थे। उन्होंने अपने रसवाद में अनुभूति को सर्वोपरि महत्व देकर उसे लोकमानस के व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठित किया था।